तारीख 2 जनवरी दिन गुरुवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दास। कोटा में 1 महीने में 100 बच्चों की मौत, जिम्मेदार कौन?
जितना हमारे पास संसाधन उससे ज्यादा भी पेशेंट आते हैं। आप 5% इंफ्रास्ट्रक्चर से 45% पॉपुलेशन को केयर करना चाह रहे हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल?
सरकार का ऐलान, कश्मीर घाटी में SMS पर लगी रोक हटी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है?
एक तो ये था कि अदर नेटवर्क्स पे यानी अदर देन BSNL SMS चला ही नहीं, और दूसरा ये कि J&K से बाहर SMS BSNL पे भी नहीं जाता है।
हांगकांग में प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर, पुलिस पर लगा ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप।
Police did not use any force until close to 7 p.m. So actually,
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार कमलेश मठेनी से। राजस्थान के कोटा में JK लोन अस्पताल में 1 महीने में 100 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस इस मामले पर चुप है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया में जंगल की आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए एक युद्ध पोत तैयार किया जा रहा है। इस ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार को होने वाली है। न्यू साउथ वेल्स में अग्निशमन अधिकारियों ने छुट्टी मनाने के लिए आए लोगों को तटरेखा से दूर जाने के लिए कहा है। वहीं न्यू साउथ वेल्स में स्थानीय लोगों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विरोध के बाद उन्होंने आग से प्रभावित इलाकों के दौरे को टाल दिया है। ताइवान में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के एक मामले में कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इस दुर्घटना में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शन यी मिंग समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोगों की जान बच गई है। शन यी मिंग ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित एक सैन्य ठिकाने पर जा रहे थे। इस दुर्घटना के बाद ताइवान के मुख्य राजनीतिक दलों ने अगले हफ्ते होने वाले चुनाव के लिए प्रचार रोक दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्घटना में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। आज बहुत दुख भरा दिन है। हमारे कुछ बेहतरीन अधिकारी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो सेना में कुछ सबसे अच्छे अधिकारियों में से थे, खासकर के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शन यी मिंग। उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसका हमें अत्यंत दुख है। ये थी ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। छत्तीसगढ़ के पत्रकार संतोष यादव को NIA की विशेष अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। संतोष यादव को 2015 में पुलिस ने माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में और जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से आलोक पुतल।
रायपुर से प्रकाशित होने वाले 2 अखबारों के संवाददाता रहे संतोष के खिलाफ पोट्टा और टाडा से भी कड़े प्रावधान वाले छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी और पुलिस ने दावा किया था कि वे सुरक्षा बलों पर किए जाने वाले माओवादी हमलों में शामिल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर मीडिया जगत के लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन 520 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल पाई थी।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आई बाढ़ के चलते कम से कम 21 लोगों की जान चली गई है। लगभग 30,000 लोगों को अपना घर छोड़कर शिविरों में रहना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते कुछ जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। इंडोनेशिया के मौसम विभाग का कहना है कि एक दिन में 37 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इस बार आई बाढ़ को 7 सालों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। तुर्की की संसद में उस विधेयक को लेकर चर्चा जारी है जिसमें लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार की मदद के लिए सेना भेजने की अनुमति दी गई है। इस विधेयक पर संसद में चर्चा के बाद मतदान होने वाला है। पिछले कई महीनों से सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाली सेना लीबिया की सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान का कहना है कि वह लीबिया की सरकार के अनुरोध का जवाब दे रहे हैं। हालांकि तुर्की के हस्तक्षेप से हालात और बिगड़ने की चिंता भी जताई जा रही है। कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोन के जापान से लेबनान भाग जाने के बाद तुर्की के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तांबुल से लेबनान तक की यात्रा कैसे की। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कोटा से, जहां के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर महीने में 100 बच्चों की मौत हो गई है। इसे लेकर अब सियासत गहरा रही है और केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य की कांग्रेस सरकार पर उदासीन और गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगा रही है। लेकिन इतनी संख्या में बच्चों की मौत का कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव या फिर उस तक पहुँच की कमी? कोटा के इस अस्पताल की क्या है जमीनी स्थिति, सुनिए बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश की रिपोर्ट, जो अब से कुछ घंटों पहले ही कोटा से लौटे हैं।
भाव शून्य माएं, भागती दौड़ती नर्सें और नेताओं की आवभगत करते वरिष्ठ डॉक्टर, ये उस अस्पताल का हाल है जहां बीते एक महीने में 100 से ज्यादा नौनिहालों की मौत हो चुकी है। बच्चों के मरने का सिलसिला जारी है और इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर कोटा में बच्चों की मौत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का आग्रह किया है।
मैंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी, जो भी टेक्निकल रूप से हमें आवश्यकताओं की राज्य सरकार हम देंगे, और इसीलिए केंद्र सरकार भी एक विशेष दल भेजा है विशेषज्ञों का कि मौत होने के क्या कारण है और लगातार मौतें क्यों बढ़ रही हैं।
इस पर गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार कोटा के जेके लोन अस्पताल में बीमार बच्चों की मौत को लेकर संवेदनशील है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरे 5-6 साल के अंदर सबसे कम आंकड़े अब आ रहे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था वहाँ कर रखी है, मैं किसी को इस मौके पर दोष नहीं देना चाहता। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरुआत से ही इसमें कोई राजनीति नहीं करी है। पिछले 5 साल के आंकड़े थे, उसमें लगातार बीजेपी के शासन में ये आंकड़े कम होते गए और हमारे आने के बाद और कम हो गए।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस अस्पताल में बच्चों की मौत क्यों हो रही है? अस्पताल के शिशु औषध विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमृत लाल बैरवा इसके लिए मरीजों की अधिक संख्या को जिम्मेदार मानते हैं।
मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्पिटल है, टर्शियरी लेवल का हॉस्पिटल है और सारे पेशेंट रेफर्ड पेशेंट आते हैं। सारे पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, जब वहाँ पे लास्ट देन दे कम टू हियर, जितना हमारे पास संसाधन उससे ज़्यादा भी पेशेंट आते हैं। आप 5% इंफ्रास्ट्रक्चर से 45% पॉपुलेशन को केयर करना चाह रहे हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल? 111 इन्फ्यूजन पंप थे, उसमें से 30 वर्किंग थे और ये 21 दिसंबर का अपडेटेड है।
मतलब आपके पास 12 बेड बिना इन्फ्यूजन?
बिल्कुल बिल्कुल, एज पर नॉर्म्स हर बेड पे इन्फ्यूजन पंप होना चाहिए, मॉनिटर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सक्शन भी होना चाहिए और इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर वेंटिलेटर भी 50% पे वेंटिलेटर भी होना चाहिए, ये नॉर्म्स है। बहुत छोटे स्पेस के अंदर NICUs और PICUs चल रही हैं, उसमें हम इतने इक्विपमेंट्स को अकोमोडेट भी नहीं कर सकते। दीज बेड्स आर ए ओवर कंजेस्टेड बेड। अब जो कि पेरीफ्री से रेफरल जो आ रहा है उसको हम कम नहीं कर पा रहे, पेरीफ्री का सिस्टम मजबूत नहीं हो पा रहा है, वर्कलोड सारा हमारे ऊपर बढ़ रहा है।
लेकिन सवाल उठता है कि बच्चों के बीमार होने पर लोग उन्हें नज़दीकी केंद्रों पर क्यों नहीं ले जाते? इसी अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर आए मोहन मेघवाल इसकी वजह बताते हैं।
बच्चे को इन्होंने देखा और कुछ मेडिसिन गोली दवाइयाँ लिख दी, फिर और फिर उन्होंने कहा कि जाओ, फिर मैंने देखा कि गोली दवाइयाँ जो है, मैंने देखा कि सिर्फ गोली दवाइयाँ ही है, कोई इसको प्रॉपर इलाज नहीं है। फिर वापस डॉक्टर के पास जाके उनसे बोला, उनसे मैंने प्रार्थना की कि आप इसे कृपया करके यहाँ पे भर्ती कर लीजिए ताकि इसका ढंग से इलाज हो सके, आपकी देख रेख में इलाज हो सके। अपने बच्चे को जो था, मैं एक बस में ट्रेवल करते हुए यहाँ पे लाया हूँ और काफ़ी जो कल का जो मौसम था, आज से काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और उस मौसम में इस बच्चे को परेशान करते हुए मुझे यहाँ पर लाना पड़ा, जो कि निमोनिया जो है उस बच्चे का, जो उस बच्चे की सांस काफ़ी तेज चल रहे थे, बच्चा काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि शायद देश का तो छोड़ो, सरकार लापरवाह है, प्रशासन लापरवाह है और राजनेता अपना सोचते हैं, आम लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है।
ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी यही हालात हैं या इन बच्चों की मौत के लिए अस्पताल प्रशासन ही जिम्मेदार है? स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से रिपोर्टिंग करने वाली वरिष्ठ पत्रकार स्वागता यादवार इसकी वजह बताती हैं।
जिला अस्पतालों में भी ये हालत है कि इवन दो वहाँ स्पेशलिस्ट होने चाहिए पूरे दिन, वो सुबह और शाम के समय पे होंगे, बाकी जगह तो सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर मिलते हैं। जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए आईसीयूज, एनआईसीयूज जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती हैं, वो पूरी फुल हो जाती हैं ऐसे टाइम पे जब बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो अगर वहाँ 25 बेड्स हैं तो एक्चुअल बेबीज जो होते हैं वो कभी कभी एक बेड पे दो बच्चे होते हैं।
तमाम लोगों, परिजनों और अस्पताल कर्मचारियों से बातचीत के बाद भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि अस्पताल में खराब उपकरणों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की कम संख्या और शासन का उदासीन रवैया आखिर कब तक इन बच्चों की मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता रहेगा। बीबीसी अनंत प्रकाश, कोटा।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था जिन्हें बाद में ये कहते हुए रिहा कर दिया कि इन लोगों को गलती से पकड़ लिया गया था। गिरफ्तार लोग अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे लेकिन जब तक पुलिस अपनी गलती मानती तब तक 11 दिन ये लोग जेल में काट चुके थे। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र।
मुजफ्फरनगर में 20 दिसंबर को पुलिस ने बड़ी संख्या में उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर एक दिन पहले हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने का संदेह था। बाद में 74 लोगों को जेल भेजा गया जबकि बाकी की पहचान अभी की जा रही है। लेकिन जिन्हें जेल भेजा गया उनमें भी कई लोगों के परिजन उन्हें बेकसूर बता रहे हैं। ऐसे 4 लोगों की बेगुनाही की बात पुलिस ने भी स्वीकार की और उनकी रिहाई की कोर्ट से अपील की लेकिन इस कागजी कार्रवाई में 11 दिन लग गए। मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बीबीसी को बताया,
74 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से 4 को हमने माना कि मतलब इन लोगों की संलिप्तता नहीं थी। इसके लिए कानून में भी प्रोविजन है 169 CRPC, माननीय न्यायालय के समक्ष ये बातें रखी गई और जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से कोई भी निर्दोष प्रताड़ित ना हो और जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो, उसी के क्रम में ये सारी चीजें रखी गई। माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया गया तो उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया।
पुलिस के मुताबिक निर्दोष लोगों की पहचान की जा रही है और जो लोग निर्दोष होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल जिन 4 लोगों को रिहा किया गया है उनमें 56 वर्षीय मोहम्मद फारूक भी हैं। मोहम्मद फारूक को 20 दिसंबर को उनके बेटे के साथ पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था। मोहम्मद फारूक रोजगार कार्यालय में नौकरी करते हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस वालों से बताता रहा लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी।
मैं तो अपने ऑफिस से ही ऑफिस तो घर गया रात और पुलिस वाले आए, काफी पुलिस पब्लिक थी, वो मुझे उठा को ले गए मेरे बच्चे को और मुझे, और साहब मैं गवर्नमेंट अप्लाई हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे छोड़ दो, बस ये बात हुई थी। फिर मुझे इन्होंने जेल भेज दिया और जेल भेजने के बाद फिर मोबाइल छीन लिए थे दोनों, मेरा भी और बच्चे का भी, गाड़ी में मारपीट कर को गाड़ी बिठा को ले गए, पुलिस लाइन में बंद कर दिया, हमारे परिवार से किसी से मिलने नहीं दिया। 56 साल की मेरी उम्र, ब्लड प्रेशर का मैं बीमार हूँ, दोनों टाइम में गोली खाऊ, सारा सामान उठा ले गए, जो बाहर का सामान कुछ नहीं जो थे सब तोड़ रखा जी, घर देख लो क्या।
फारूक का कहना था कि हिरासत के दौरान उन्हें और उनके बेटे के साथ मारपीट भी की गई। फारूक के अलावा मुजफ्फरनगर में अतीक अहमद, शोएब और खालिद को भी छोड़ दिया गया। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं और जिस दिन हिंसा हुई उस दिन ये लोग अपने एक बीमार रिश्तेदार को मेरठ अस्पताल लेकर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इनको निर्दोष बताते हुए इनकी रिहाई से संबंधित रिपोर्ट कई दिन पहले ही दाखिल कर दी गई थी लेकिन कोर्ट में छुट्टी के चलते रिहाई में 11 दिन लग गए। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
इधर श्री सिद्ध गंगा मठ का दौरा करने कर्नाटक के तुमकुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारे लगाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएं। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
जो लोग पाकिस्तान से अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बलात्कारियों से बचाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए भारत के शरण आए, उनके खिलाफ कुछ जुलूस निकाले जा रहे हैं लेकिन जिस पाकिस्तान ने वहां की माइनॉरिटी के खिलाफ, वहां के हिंदू सिख ईसाई के ऊपर जो जुल्म किया उनके खिलाफ इन लोगों को बोलने की न फुर्सत है, क्या कारण है उनके मुंह पर आज तारे क्यों लगे।
बीते साल अगस्त की 5 तारीख को जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का ऐलान हुआ और उसके बाद से ही वहां मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में एक एक करके कई जगहों पर मोबाइल सेवाएं शुरू की गईं, इंटरनेट सेवा भी बहाल हुई, लेकिन कश्मीर घाटी में पाबंदियां जस की तस रहीं। 31 दिसंबर को सरकार ने ऐलान किया कि घाटी में SMS सेवा शुरू की जाएगी। पहले सुनते हैं जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल को।
फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ टुडे December 31, 2019 SMS services on mobile phones will be fully restored throughout the valley of Kashmir.
लेकिन क्या वाकई कश्मीर घाटी में सभी नेटवर्क पर SMS सेवा शुरू हुई है? जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद BBC संवाददाता रियाज मसरूर से।
कश्मीर वैली की अगर बात करें घाटी की, तो कोई 80 लाख यहाँ जनसंख्या है, जिसमें कोई 70-75 लाख मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हैं। इन 75 लाख सब्सक्राइबर्स में से 15 से 20 लाख के बीच ही BSNL सब्सक्राइबर्स हैं, जिस पे ये सेवाएं शुरू की गई हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया साफ साफ कि सभी नेटवर्क्स पे SMS सब चलेगा, लेकिन फिर जब लोग सुबह जागे तो उन्होंने न्यू ईयर विश करना चाहा लोगों को। एक तो ये था कि अदर नेटवर्क्स पे यानी अदर देन BSNL SMS चला ही नहीं, और दूसरा ये कि J&K से बाहर SMS BSNL पे भी नहीं जाता है। तो इस तरह से प्रतिबंधित ही है इस वक्त कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरनेट पहले से ही बंद है। जो 26 लाख सब्सक्राइबर्स हैं प्रीपेड मोबाइल फोन के, उनके फोन तो बंद ही हैं। तो इस तरह से ये जो घोषणा थी, इस घोषणा को सुनते ही लोग बहुत ही खुश हुए थे, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ नहीं, सिवाय सिर्फ उन चंद लाख सब्सक्राइबर्स के, जिसमें बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की या जो अर्धसैनिक बल है उनकी होती है, और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर फोन जहां बाकी नेटवर्क।
तो टेक्निकली ये कि SMS सेवा शुरू तो कर दी गई है, लेकिन कम्युनिकेशन उस तरह से बना नहीं।
जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन जिस तरह से प्रतिबंधित है, मतलब चूंकि रेस्ट्रिक्टेड है, 2-2.5 महीने बाद ही हम मोबाइल फोन सेवाएं तो चालू की गई थी, 1-1.5 महीने बाद लैंडलाइन खोला गया था, लेकिन जिस तरह की दिक्कतें या कठिनाइयां हैं इंटरनेट पर प्रतिबंध, SMS पर प्रतिबंध से, वो तो अभी भी जारी है।
और सर, वहां इंटरनेट की सुविधा कब तक बहाल की जाएगी, या SMS पूरी तरह से कब तक बहाल किया जाएगा, क्या इसके बारे में प्रशासन ने या सरकार ने कुछ बोला है?
जी देखिए, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन घोषणाओं से होता है। पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा कि ये सारा काम जो है ये यहाँ का जो उपराज्यपाल प्रशासन है वो देखेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर विल टेक द कॉल, जब वो स्थिति का जो है विश्लेषण करेंगे तो उसके बाद ही जो है उसमें वो कॉल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोकल ऑफिसर्स हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि जब दिल्ली से उन्हें सिग्नल मिलेगा कि छोड़ना है तब वो छोड़ेंगे। तो इस तरह से आम लोगों में कंफ्यूजन सा बना हुआ है, इसलिए कोई भी ये फोरकास्ट नहीं कर सकता है कि कब तक मोबाइल फोन पे SMS सुविधा या इंटरनेट सुविधा कब बहाल हो सकती है। एक तरफ से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार ये कहा कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हालात खराब है, हालांकि हालात बिल्कुल सामान्य है, उन्होंने कहा कि एक भी गोली नहीं चली। अगर ऐसे हालात सामान्य है तो इसमें इन प्रतिबंधों का लॉजिक जो है वो समझ नहीं आता है। और दूसरी ओर ये कहा जाता है कि थ्रेट है, बहुत ज्यादा टेररिस्ट थ्रेट है या किसी और तरह का थ्रेट है, तो उसकी वजह से बंद है। लेकिन आम लोगों को, खास तौर से जो यहाँ छात्र छात्राएं हैं, ये एक ऐसा सीजन होता है जब उन्हें देश के जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज होती है या प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भरने होते हैं, उसके लास्ट डेट्स चले गए हैं। नीट के लिए 26,000 जो छात्र छात्राएं हैं वो दर दर भटक रहे थे। हालांकि प्रशासन ने कुछ डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज में कुछ कंप्यूटर्स लगाए थे, लेकिन जब 26,000 लोगों को फॉर्म भरना हो तो 10-15 कंप्यूटर्स से ये काम नहीं होता है, कई लोग जो है उसमें रह गए हैं। इससे पूरी जो लाइफ है, पूरा जनजीवन जो है इससे प्रभावित है, बल्कि एक अटका हुआ है, एक लिम्बो में है पूरी लाइफ।
जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता रियाज मसरूर। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। नया साल पूरी दुनिया में रोशनी से सराबोर जश्न के माहौल में शुरू हुआ, लेकिन हांगकांग में ऐसा नहीं हुआ। हांगकांग में नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। इसका मकसद था सरकार को ये बताना कि 6 महीनों पहले शुरू हुए आंदोलन की आग धीमी नहीं पड़ी है। आज वांचाईबार जिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
हांगकांग में नया साल शुरू हुआ विरोध की आवाजों के साथ। यहां हजारों की तादाद में लोग चीन की सत्ता का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे।
फ्रीडम, 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 फ्रीडम,
यहां नए साल के जश्न के मौके पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। पुलिस ने 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों का कुल आंकड़ा करीब 7000 पहुंच चुका है। पुलिस अधीक्षक न्योंग लोक चुन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को इलाका खाली करने के लिए काफी वक्त दिया गया, लेकिन कुछ दंगाइयों की हिंसक हरकतों के बाद उन्हें कड़े कदम उठाने पड़े। न्योंग लोक चुन कहते हैं,
पुलिस did not use any force until close to 7 p.m. tonight. So actually, since the announcement made,
देर शाम तक पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों की रैली की जगह से दूर हमें दंगाइयों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़े। कुछ दंगाई हमारे अधिकारियों पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे। अब तक पुलिस ने अवैध रूप से इकट्ठा होने और हथियार रखने के आरोप में 400 लोगों को हिरासत में लिया है।
हांगकांग में बीते लगातार 6 महीने से चीन सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी एक विवादित बिल का विरोध कर रहे थे, जिसमें ये प्रावधान प्रस्तावित था कि हांगकांग के लोगों को मुकदमा चलाने के लिए चीन प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस बिल को वापस ले लिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी पूर्ण गणतंत्र की मांग कर रहे हैं। हांगकांग में गणतंत्र समर्थक समूह सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट से जुड़े जिमी शाम कहते
हैं,
आंदोलन की शुरुआत से अब तक ये देखने को मिला है कि सरकार इस पूरे आंदोलन को किसी तरह दबा देना चाहती है। पहले गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए मदद जुटाने वाले समूह पर हमला, फिर शिक्षकों पर, फिर सरकारी कर्मचारियों पर, और फिर शायद जिला काउंसिल के लोगों को निशाना बनाया जाएगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम हार नहीं मानेंगे और जिसे भी सरकार प्रताड़ित कर रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी 5 मांगों को माना जाए।
प्रदर्शनकारी विवादित प्रत्यर्पण बिल को पूरी तरह खत्म करने, जिन लोगों को हिरासत में रखा गया है उन्हें रिहा करने, पुलिस कार्रवाई की जांच करने, हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम के इस्तीफे और विरोध प्रदर्शनों को दंगा न कहने की मांग कर रहे हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी और अब वक्त है आपकी चिट्ठियां सुनने का।
आपकी राय। दोस्तों नमस्कार, आज आपकी राय के साथ मैं राजेश जोशी हाजिर हूं और मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि चिट्ठियां आपकी पढ़नी है, जवाब कुछ नहीं देना है क्योंकि जवाब दिया जा चुका है। तो सिलसिला शुरू करते हैं। कृष्ण कुमार लिखते हैं कि मैं ये समझने में नाकाम हूं कि बीबीसी हिंदी क्यों बंद हो रही है। अगर आर्थिक कारणों से ये फैसला किया गया है तो कई श्रोता पैसा देकर भी हिंदी रेडियो सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई और चिट्ठियां आई हैं। ब्रीमन जर्मनी से हमारे श्रोता गोविंद सिंह ने लिखा है, बीबीसी रेडियो कार्यक्रम बंद हो रहा है, ये सुनकर दुख हुआ। मैं 1990 से रेडियो पर बीबीसी सुनता आ रहा हूं। बीबीसी की जगह कोई और नहीं ले सकता। अंबाला कैंट हरियाणा से रिटायर्ड लेक्चरर रविंद्र कुमार शर्मा ने एक रिकॉर्डेड संदेश भेजा है। कहते हैं कि राजेश जी आजकल जवाब नहीं दे रहे हैं। आइए पहले उनका संदेश सुनते हैं।
आपने रेडियो तो बंद कर दिया और मोबाइल पे भी बंद कर दिया। हमारी समस्या ये है कि वैसे तो बहुतों को मोबाइल चलाना नहीं आता, चलो वो भी एक अलग इशू हो गया, अब काफ़ी लोगों को आ गया धीरे धीरे। जैसे तैसे हमने सीखा तो अपने मोबाइल पर बंद कर दिया। आप अगर मोबाइल पर वैसे चालू नहीं करना चाहते जैसा आप ठीक समझे, आपको ऐसी ऐप डेवलप कर दे, ऐसी ऐप दे दे, बता दे कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे वो परचेज ही करनी पड़े, हम परचेज कर लेंगे। तो बहुत से लोग परचेज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। उसमें आपका दोनों टाइम का बीबीसी आ जाए, चाहे वो टेक्स्ट ही आए, जैसे इंटरनेट पे आता है, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको ठीक लगे। पंजाब का भी बीबीसी आपने चलाया था पंजाबी में, क्या वो पंजाबी सर्विस भी बंद हो गई है क्या, या कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएं, वो कहाँ आती है अगर आ रही है तो। बहुत शुक्रिया।
ये थे रविंद्र कुमार शर्मा। तो शर्मा जी आपकी शिकायत तो अपनी जगह ठीक है कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जवाब इस तरह से कोई है नहीं। एक फैसला हो गया है और उसकी जानकारी आप लोगों को दी जा चुकी है। जहां तक आपका पंजाबी सर्विस के बारे में सवाल है, तो पंजाबी सर्विस का कोई रेडियो प्रोग्राम था ही नहीं पहले भी। बीबीसी की वेबसाइट है, बीबीसी पंजाबी सर्विस की, आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उनका यूट्यूब और फेसबुक पेज भी है। एक अगला ईमेल है, लिखा है, मैं ये चिट्ठी अपने पापा की ओर से लिख रहा हूँ, उन्हें हिंदी लिखना नहीं आता। उनका नाम मोहम्मद हजरुल है और वो 65 बरस के हैं। वो आज तक किसी रिश्तेदार के यहाँ रात को नहीं ठहरे, अगर गए भी तो शाम 7 बजे से पहले घर लौट आए ताकि 7 बजे बीबीसी बांग्ला और 7:30 बजे बीबीसी हिंदी रेडियो कार्यक्रम सुन सकें। मेरे पापा की ख्वाहिश है कि उनका नाम बीबीसी से प्रसारित किया जाए। तो उनका नाम है मोहम्मद हजरुल साहब। मोहम्मद हजरुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने बेटे से ये चिट्ठी लिखवाई है, जिनका नाम है मुनाजिर आलम और ये रहने वाले हैं मारवा गांव, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल से। तो मोहम्मद हजरुल साहब, आप ही जैसे श्रोता हैं जिनकी वजह से हम इतने बरसों तक अपना काम करते रहे। कयूम खां गोहसी मऊ उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बीबीसी इंडिया बोल सुना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, पर मुबारक हो बीबीसी को जो अपनी बात रखने का कम से कम मौका तो देता है। अगला ईमेल है बेंगलोर से शशिधर जी ने लिखा है, लिखते हैं मैं सोच रहा था कि डिजिटल मीडिया पर आप नमस्कार भारत और दिन भर जारी रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीबीसी का बंद होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। क्या आप सरकार के दबाव में रेडियो बंद कर रहे हैं? उम्मीद है कि एक दिन रेडियो सेवा फिर शुरू होगी। और सादिक आजमी ग्राम सभा कौड़िया आजमगढ़ से लिखते हैं, विगत कई दिनों से लगातार हम श्रोता मित्रों द्वारा शॉर्टवेव प्रसारण बंद न करने की गुहार लगाई जा रही है, मगर आपकी ओर से दिलासा भरा एक भी शब्द नहीं निकल रहा। समझ में नहीं आता आप इतने निर्दयी कैसे हो गए हैं। भाई सादिक आजमी साहब, हम निर्दयी तो कतई नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। रविंद्र कुमार रंजन ग्राम पोस्ट मढ़िया वाया बासोपट्टी जिला मधुबनी मिथिलांचल बिहार से लिखते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि बीबीसी का सुबह का प्रसारण शुरू करने की कृपा करें। इसके लिए आप हम श्रोता से जो आर्थिक सहायता के रूप में लेना चाहें वो हम श्रोता देने को तैयार हैं। सुरेश अग्रवाल के सिंगा ओडिशा से लिखते हैं कि आवाज़ की दुनिया के जादूगर अमीन सायानी से भाई सुभाष वोहरा द्वारा ली गई भेंटवार्ता सुनकर मेरी 3-3 पुरानी यादें एक साथ जीवंत हो उठी। जी हाँ, दिवंगत भाई ओंकारनाथ श्रीवास्तव तथा सुभाष वोहरा का वो दौर अचानक आंखों के सामने घूमने लगा जब बुश हाउस के स्टूडियोज में उनकी धूम हुआ करती थी। मैंने अमीन सायानी साहब की ये भेंटवार्ता तब भी सुनी थी और अब भी सुनी। अल्मोड़ा उत्तराखंड से इंद्रजीत पानू ने भी इसी इंटरव्यू का जिक्र किया है, लिखते हैं खास तौर पे मुझे वो चीज़ याद रही कि सायानी जी ने जब इंटरव्यू करने वाले से पूछा आप मेरी बात से सहमत हुए कि नहीं, तो सुभाष वोरा ने कहा मैं सहमत हूँ या नहीं ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि श्रोता सहमत हैं या कि नहीं। तो इसकी तारीफ बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है। दोस्तों, अपनी राय हमारे जो बीबीसी का ये फैसला हुआ है उस पर आप हमें लिखना जारी रखिएगा, बहुत सारी पुरानी आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। और अगर आप लोग अपनी ईमेल के साथ या चिट्ठियों के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे तो हम आप में से कुछ को संपर्क हम करेंगे और आपकी बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। चलते चलते पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब चलते चलते खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूँ रेखा। सबसे पहले बात क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज ने आयरलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए जेसन होल्डर को आराम दिया है। वेस्ट इंडीज के चयनकर्ता रोजर हार्पर ने कहा कि वेस्ट इंडीज के लिए ये साल काफी अहम है, हमें उन्हें आराम देने का ये सही समय लगा ताकि वो अपने आप को तरोताजा कर सके और 2020 में टेस्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की सीरीज 7 जनवरी से शुरू हो रही है। वेस्ट इंडीज ने हाल ही में भारत में सीरीज खेली। भारतीय टीम इस महीने 3 टीमों के खिलाफ कुल 10 मैच खेलेगी। भारतीय टीम 2020 का पहला मैच 5 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। ये मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। इसके बाद भारत और श्रीलंका की टीमें 7 जनवरी को इंदौर और 10 जनवरी को पुणे में भिड़ेंगी। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम की अहम सदस्य सुनीता लाकड़ा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सुनीता ने चोट की वजह से महज 28 साल की उम्र में खेल को अलविदा कह दिया। बता दें, सुनीता पिछले काफी समय से घुटने की चोट से जूझ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी को छोड़ने का फैसला किया। सुनीता लाकड़ा ने कहा, मैं जब भी ठीक हो जाऊंगी तो घरेलू हॉकी खेलूंगी। खेल समाचारों में आज इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में 1 महीने में 100 बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस इस मामले पर चुप है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में जंगल की आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए एक युद्ध पोत तैयार किया जा रहा है। इस ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार को होने वाली है। ताइवान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मामले में कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। इस दुर्घटना में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शन यी मिंग समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार संतोष यादव को एनआईए की विशेष अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। संतोष यादव को 2015 में पुलिस ने माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला रविशंकर कुमार ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।